तारीख 9 जुलाई दिन मंगलवार, कार्यक्रम दिन भर। नमस्कार। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर में बारिश के चलते मैच रुका। हांगकांग की नेता कैरी लैम ने कहा दम तोड़ चुका है हांगकांग का प्रत्यर्पण बिल। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने पर बनाया सस्पेंस। महिला मंत्रालय की तर्ज पर पुरुष आयोग की हो रही है मांग।
FIR एक पुरुष जब लिखवाने जाता है तो कहीं उसकी FIR नहीं दर्ज होती, कोई पटल नहीं है या जहां पे पुरुष।
खबरें और भी होंगी लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। हांगकांग में हुए प्रदर्शनों के नेताओं ने हांगकांग की कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम के भाषण की आलोचना की है। इस भाषण में लैम ने प्रत्यर्पण विधेयक को मृत कहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे वापस नहीं लिया गया है। एक प्रमुख छात्र नेता जोशुआ वांग ने लैम को आदतन झूठा बताते हुए कहा है कि कई सप्ताह चले जनता के प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। विपक्षी नेता एल्विन यंग का कहना है कि वो नहीं जानते कि लैम ने विधेयक को वापस क्यों नहीं लिया। इससे पहले लैम ने कहा था कि इस विधेयक को फिर लाने का उनका कोई विचार नहीं है। यदि ये विधेयक कानून बना तो हांगकांग के अभियुक्तों को मुकदमा चलाने के लिए चीन लाया जा सकेगा। कैरी लैम के भाषण की प्रतिक्रिया में इस हांगकांग वासी ने कहा, जहां तक प्रदर्शनों की बात है, मुझे लगता है कि जब तक सरकार इस विधेयक को वापस न ले ले और स्वतंत्र जांच आयोग न गठित करे, ये प्रदर्शन चलते रहने चाहिए। इनका सिर्फ एक पक्ष नहीं है और न ही ये किसी एक मुद्दे को लेकर हैं। ये थे हांगकांग के एक शख्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में ब्रितानी राजदूत पर हमला तेज करते हुए उन्हें महामूर्ख कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री टेरिजा मे की भी फिर से आलोचना की है। ब्रेग्जिट को लेकर टेरिजा मे के नज़रिए को वो मूर्खतापूर्ण और नुकसान पहुंचाने वाला बता चुके हैं। हाल ही में ब्रितानी राजदूत सर किम डेरक के निजी ईमेल लीक हो गए थे। इनमें डेरक ने ट्रंप के प्रशासन को अयोग्य, उद्दंड और नकारा कहा था। राजदूत को आज ब्रितानी मंत्री के साथ व्हाइट हाउस जाना था, लेकिन अब ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच शुरू हुए इस कूटनीतिक विवाद पर पूर्व ब्रितानी विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिका के साथ संबंधों की हिमायत की।
I've got a good relationship with the White House and I have no embarrassment in saying that. I think it's very important.
व्हाइट हाउस से मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बेहद अहम है कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं। अमेरिका हमारा सबसे सहयोगी है। ये थे पूर्व ब्रितानी विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्था ऑक्सफैम ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों की सरकारों से कहा है कि वो अपने बढ़ते धन का इस्तेमाल गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए करें। ऑक्सफैम ने चेताया है कि ये समस्या अब संकट बनती जा रही है। संस्था ने कहा है कि प्रगतिशील कराधान सामाजिक ज़रूरतों पर अधिक खर्च करने और बेहतर नौकरियों के मौके देने से क्षेत्र की स्थिरता को और मजबूती मिलेगी। ऑक्सफैम का कहना है कि अफ्रीका की 10 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में 6 पश्चिमी अफ्रीका में हैं। बीते 2 दशक में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन इस क्षेत्र के सबसे अमीर 1% लोगों के पास बाकी लोगों की कुल संपत्ति से अधिक धन है। मिस्र का कहना है कि वो बीते सप्ताह लंदन में बिकी तूतन खामन की प्रतिमा की बिक्री के सिलसिले में एक ब्रितानी कानूनी फर्म से मुकदमा दायर करने के लिए कह रहा है। फिरौन तूतनखामन की ये प्रतिमा क्रिस्टी नीलामी घर में करीब $60 लाख में बिकी है। मिस्र की सरकार ने इस बिक्री को रोकने की अपील की थी। BBC समाचार।
BBC बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com के साथ रेडियो पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इससे पहले कि हम समसामयिक विषयों यानी कि देश दुनिया की राजनीति की बात करें, पहले बात करते हैं क्रिकेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस समय मैनचेस्टर में खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बारिश हो रही है और बारिश के चलते ये मैच बाधित हुआ है। न्यूजीलैंड का इस समय का स्कोर है 46.1 ओवर में 211 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सीधे कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नितिन श्रीवास्तव को, जो कि इस मैच को भी देख रहे हैं। नितिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि चल क्या रहा है?
चल ये रहा है मोहनलाल जी की, अभी बाहर बारिश हो रही है और इस तरह से बारिश हो रही है तो मुझे लगता नहीं है कि आसार कम है बारिश के अभी फिलहाल अगले एक घंटा कम से कम रुकने के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस तरह की बारिश हो रही है, अगर ये इस तरह से होती रही तो आगे चल के मैच को शायद संकेतित यानी उसको छोटा करना पड़ सकता है। और ये प्रेडिक्शन भी था पहले कि दोपहर में 12 बजे के आसपास एक के आसपास बारिश होगी और वैसा ही हो रहा है। और फिलहाल जो डकवर्थ लुईस मेथड होता है क्रिकेट में, जब मैच छोटा करना पड़ता है, उसको प्ले में लाना पड़ता है, शायद उसकी नौबत आ सकती।
चलिए इस आगे की प्रक्रिया पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल तो 46 ओवर का मैच हो चुका है, न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर चुकी है। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड की पारी की बात कीजिए।
न्यूजीलैंड की पारी की बात अगर आप करें तो गप्टिल बहुत शुरू में जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद कप्तान विलियमसन ने बहुत सही हुई पारी खेली है और बहुत बैलेंस वे में उन्होंने खेला है, अपने शॉट्स को बहुत कंट्रोल किया है। और हालांकि न्यूजीलैंड की इनिंग्स कोई बहुत स्लैम पॉइंट इनिंग्स नहीं रही है, कोई बहुत तेज इनिंग्स नहीं रही है, लेकिन पिच को क्लाउडी कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने संभल कर खेला है। और शायद उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमें ऑल आउट नहीं होना है, क्योंकि शुरू में एक बार जब 7 ओवर में 15-20 रन का स्कोर होता है तो उसके बाद आपको ये पारी रिबिल्ड करनी पड़ती है। तो उसको देखते हुए न्यूजीलैंड ने बुरा स्कोर नहीं किया है, बट जाहिर है बहुत कॉम्पिटेटिव स्कोर में नहीं है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और 50 ओवर का गेम है, आजकल 200, 225 बहुत ज्यादा स्कोर नहीं माना जाता।
बुमराह की गेंदबाजी, मतलब भारत की क्या धमाल गेंदबाजी कहेंगे इसे अब तक?
हाँ, भारत की अच्छी गेंदबाजी कहेंगे, बहुत सदी हुई गेंदबाजी थी, बहुत से ऐसे चांसेस भी थे जो मिस भी हुए, लेकिन फिर भी भारत ने आज कम से कम एक बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी की है, अगर मैं कहूँ तो, चाहे वो जडेजा हो चाहे वो बुमराह हो, और सारे बॉलर्स जो है काफी कॉन्फिडेंस में दिखे हैं इस मैच में, और यही इम्पोर्टेंट होता है जब आप बड़े मैचेस में खेलते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, कार्यक्रम के अंत में एक बार हम फिर से मैच का हाल जानने के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल मैनचेस्टर से सीधे इस कार्यक्रम में लाइव शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11,795, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। हांगकांग की नेता कैरी लेम ने कहा है कि उस विवादास्पद बिल का अब अंत हो चुका है जिसके तहत हांगकांग के किसी अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए चीन प्रत्यर्पित किया जा सकता था। हांगकांग में, जैसा कि आप जानते हैं, लंबे समय से प्रत्यर्पण संशोधन विधेयक को लेकर विरोध बना हुआ है और बीते रविवार को भी करीब 1,00,000 लोगों ने इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें कि ज्यादातर छात्र थे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए भूमिका राय से।
हांगकांग के नेता कैरी लेम ने कहा है कि चीन की मुख्य भूमि में प्रत्यर्पण से जुड़े विवादास्पद बिल का अब कोई वजूद नहीं रह गया है। उन्होंने इसे मृत प्राय बताया। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन के संबंध में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो आगे भी प्रदर्शन और रैलियां जारी रखेंगे। इस बिल की वजह से हांगकांग में एक लंबे समय से अस्थिरता का माहौल बना हुआ था और सरकार ने पहले से ही इसे अनिश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया था। पत्रकारों से बातचीत में कैम ने कहा,
On the 18th of June, I have extended my most sincere apology.
18 जून को मैंने प्रत्यर्पण बिल में संशोधन की वजह से उपजे विवाद और अस्थिरता की स्थिति के लिए सबसे माफी मांगी थी। उसके बाद से अब तक मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की और नए विचारों को सुना। मैंने उन्हें सुनने के बाद संशोधन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, लेकिन सरकार की ईमानदारी को लेकर चिंता करने की बात है। हो सकता है कि वो इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करें, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये एक मृतप्राय विधेयक है। इससे पहले लैम ने कहा था कि ये बिल साल 2020 में समाप्त हो जाएगा जब मौजूदा सत्र समाप्त होगा। उन्होंने अपने एक बयान में छात्रों की नाराजगी का हवाला देते हुए कहा,
I said on the 1st of July that I will reach out to more young people of different backgrounds.
मुझे महसूस हुआ कि बिल में संशोधन का विचार लोगों को खास पसंद नहीं आया, खास तौर पर छात्रों को। मैंने बहुत से छात्रों से बात की, कुछ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्षों से भी बात की और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हम बंद कमरे में बैठकर शांति से बात कर सकें। हालांकि इस बिल में संशोधन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं ने लैम के प्रयासों और उनकी घोषणा की आलोचना की है। सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट के बॉनी लियोंग उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने प्रदर्शन का आयोजन किया था। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक कि हांगकांग की सरकार उनकी 5 सूत्रीय मांग नहीं मान लेती। इस 5 सूत्रीय मांग में बिल को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग भी शामिल है और साथ ही उन लोगों के रिहाई की भी मांग शामिल है जिन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन कर रहे संगठन सिविल ह्यूमन राइट फ्रंट के बॉनी का कहना है, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द हमने कभी भी कानूनी तौर पर नहीं सुना। ऐसे में हम सरकार से क्या उम्मीद करें जब वो खुद ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं सिविक पार्टी के एल्वियन योंग ने बीबीसी से कहा कि विधेयक अब मृतप्राय है, ये राजनीतिक भाषा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर देखें तो ये विधेयक अब भी वजूद में है और दूसरी बार देखे जाने की प्रक्रिया में है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वापस लेने जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक अगर कोई शख्स अपराध करके हांगकांग भाग जाता है तो उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन भेजा जाएगा। हांगकांग की सरकार फरवरी के महीने में मौजूदा प्रत्यर्पण कानून में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई थी। ताइवान में एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर हत्या कर हांगकांग वापस आ गया था। इसके बाद ही इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया।
हांगकांग की नेता ने कहा कि दम तोड़ चुका है हांगकांग का प्रत्यर्पण बिल। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार पर संकट के बादल पिछले कई दिनों से मंडरा रहे हैं। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी को सत्ता बचाने की चुनौती है और सबकी नजरें स्पीकर पर हैं कि क्या वो इस्तीफा देने वाले विधायकों पर फैसला लेते हैं। इस फैसले से ही तय होगा कि सरकार का भविष्य क्या होगा। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने पर जल्दबाजी में फैसला न लेने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 13 में से सिर्फ 5 विधायकों ने ही खुद उन्हें इस्तीफा सौंपा है। दिन भर की उठापटक के साथ हैं बंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी।
कर्नाटका विधानसभा के स्पीकर रमेश कुमार आज अपने ऑफिस में उपस्थित हुए और कुछ घंटों में ही कई अहम निर्णय भी ले लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शनिवार को जब वो दफ्तर से निकले थे तब किसी विधायक उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था और निर्णय लेने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर से मीडिया को कह दिया कि वो पारदर्शी हैं, इसीलिए विधायकों के इस्तीफों के सारे कागजात सार्वजनिक दस्तावेज हैं और मीडिया को जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि 5 विधायकों के कागजात निर्धारित प्रारूप में हैं और जिनकी नहीं है उनको बता दिया गया है कि वो उससे ठीक करके फिर से दें। जो निर्धारित प्रारूप में हैं उनको सूचना दे दी गई है कि वो 12 और 15 तारीख को हमारे सामने उपस्थित रहें। इसके अलावा कांग्रेस ने भी याचिका दर्ज की है कि इन सदस्यों को अयोग्य करा दें। ये थे रमेश कुमार के शब्द। इस बीच कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक के बाद सारे सदस्य 1 घंटे महात्मा गांधी के मूर्ति के पास धरना पर बैठे। उसके बाद पक्ष के बड़े नेता स्पीकर रमेश कुमार के पास गए और अयोग्य करार दिए जाने की याचिका पेश की। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने कहा, ये विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने हैं और उनका इस्तीफा वास्तविक होना चाहिए। जो इस्तीफे दिए गए हैं वो वास्तविक नहीं हैं, वो कानून के विरोध में हैं। इसीलिए हम स्पीकर को याचिका दी है कि उनको अयोग्य ठहराएं। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। इस बीच राज्यपाल वजूभाई वाला ने भी विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि उनके पास कई विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया है और वो उनको कानून के तहत इस पर गौर करें। आज के घटनाक्रम से राज्य के राजनीतिक संकट कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही एक विधायक ने इस्तीफा दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे बात करने के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। वो विधायक थे डॉ. उमेश जाधव, जिन्होंने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव में हराया। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि बीजेपी के संपर्क में जो विधायक हैं वो कब सामने आएंगे। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
भारत के कई हिस्सों में महिला आयोग और महिला मंत्रालय की तर्ज पर पुरुष आयोग और पुलिस मंत्रालय की मांग की जा रही है। खुद को मेंस राइट्स और इक्वल राइट्स कहने वाली संस्थाएं इन मांगों की अगुवाई कर रही हैं। क्या है इनकी मांगे, सुनिए BBC संवाददाता सिंधु वासनिक की रिपोर्ट में।
हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, वी वांट मेंस कमीशन।
ये नारे दिल्ली के संसद मार्ग पर लग रहे हैं और मांग की जा रही है पुरुष आयोग की। मांग करने वालों की अगुवाई कर रही हैं खुद को इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट बताने वाली बरखा त्रेहान।
FIR एक पुरुष जब लिखवाने जाता है तो कहीं उसकी FIR तक नहीं दर्ज होती। कोई पटल नहीं है या जहाँ पे पुरुष अपनी बात रख सके। पुरुष इस देश में कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो उसका, चाहे सड़क।
भारत में अब एक ऐसा वर्ग उभर रहा है जिसका मानना है कि कई भारतीय कानून महिलाओं के हक में हैं, इसलिए पुरुषों की सुनवाई नहीं होती, खासकर दहेज हिंसा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में। प्रदर्शन करने वालों का ये भी कहना है कि बलात्कार, छेड़खानी और घरेलू हिंसा के मामले झूठे साबित होने के बाद आरोप लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ आम तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
अगर आज की डेट में मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ मेल्स एट वर्कप्लेस पॉसिबल नहीं है? क्या सेक्सुअल फेवर्स लड़कों से नहीं मांगे जा सकते?
सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रज्ञा परिजात सिंह भी पुरुष आयोग की मांग से अपनी सहमति जताती हैं। उनका मानना है कि कई भारतीय कानून ऐसे हैं जो वाकई महिलाओं की तरफ झुकाव रखते हैं।
नो डाउट औरतों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज रही हैं, लेकिन रेप के जो लॉज बने वो बिल्कुल जनरल न्यूट्रल नहीं है। उसकी वजह से होता क्या है कि अ लॉट ऑफ केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड जहाँ पे ग्रॉस वायलेशन हुआ है मेंस राइट का, और वो एक ही पर्पस था, लड़कों से सेटल स्कोर करना।
हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल की राय इससे अलग है। वो मानती हैं कि भारतीय समाज का ढांचा ऐसा है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष कानूनों की जरूरत है।
जो महिलाओं के पक्ष के अंदर जो कानून बने हुए हैं उनको लोग ऐसे समझते हैं कि ये महिलाओं के लिए बने हुए हैं और पुरुषों के खिलाफ हैं। ज्यादातर महिलाएं जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसमें जो महिलाएं हैं काफी दबी भी रही हैं। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पुरुष हैं उस महिलाओं को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए हैं। तो हमारे देश के अंदर जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे कानून बनाने की जो महिलाओं के लिए ही बने हुए हैं, पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो महिलाओं का के हक में है।
रेखा अग्रवाल कहती हैं कि अब भारतीय अदालतें और जज भी महिलाओं के आरोपों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते, बल्कि उनसे भी कड़े सवाल करते हैं। हालांकि वो भी जेंडर न्यूट्रल कानूनों की जरूरत से इनकार नहीं करती।
जमाना ऐसा आ गया है कि कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। सारे कानून जेंडर न्यूट्रल हैं, इंडियन पीनल कोड है या जो जो देश के और कानून है जो वो सारे जेंडर न्यूट्रल है, पुरुष और महिलाओं में फर्क नहीं रखते हैं। जेंडर न्यूट्रल कानून होना जरूरी है, पर एट द सेम टाइम जो पुरुषों के मन में एक ये भ्रांति है कि ये महिलाओं के हक में है, ये हमारे साथ अन्याय करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल कानून जो है बहुत ही ओपन दृष्टि से केसेस को देखता है।
पुरुष आयोग और जेंडर न्यूट्रल कानूनों की लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी अभी इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लड़ाई दिन पर दिन जोर पकड़ती नजर आ रही है। सिंधु वासिनी, BBC दिल्ली।
भारत में भी हो रही है पुरुष आयोग की मांग। आप कहीं पर भी जाएं, हर किसी के हाथ में आजकल आपको स्मार्टफोन नजर आएगा। या तो वो किसी सोशल नेटवर्क साइट पर होंगे या फिर कोई गेम खेल रहे होंगे। यहाँ तक कि घरों में भी लोग लगातार फोन पर ही होते हैं। फोन का लगातार इस्तेमाल एक तरह का नशा बन चुका है। ये एक तरह की बीमारी भी बन चुकी है और अब डॉक्टर इसका भी इलाज करने लगे हैं। अमृतसर से हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जी हाँ, यह एक हमारे स्वास्थ्य संबंधी आ रही परेशानियों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इंटरनेट के जरिए ऐप पर हर वक्त लाइव रहना और एक नई प्रतिस्पर्धा का चस्का बहुत सारे लोगों को इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर में ले जा रहा है। इस बढ़ रही बीमारी से केवल मनोरोगी ही नहीं अन्य शारीरिक बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसका सही इस्तेमाल न होने के कारण उनके पास पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर यह बच्चों से लेकर 40 वर्ष के उम्र के लोगों में पाई जा रही है। हालांकि कई बड़े शहरों में इंटरनेट डिटॉक्सिकेशन क्लिनिक भी खुल गई हैं। डॉक्टर रविंदर मल्होत्रा जो एक सर्जन है का कहना है कि कंप्यूटर मोबाइल या इंटरनेट का सही ढंग से इस्तेमाल ना करने पर यह बीमारी बढ़ रही है।
इन लोगों में प्रॉब्लम क्या आता है कि कुछ नई बीमारियां जो उभर के आई हैं उनको हम कंप्यूटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे कि जॉइंट्स का प्रॉब्लम। जो बच्चे बहुत एक्सेसिवली कीबोर्ड पे यूज़ करते हैं उनके बीमारी हो जाती है, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। उनके जॉइंट्स में डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती है। इन बच्चों में मायोपिया, ग्लूकोमा और मैकुलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से इनकी जो विजन है वो कम हो जाती है।
12वीं कक्षा की छात्रा साक्षी ने हमें बताया कि हालांकि उनके पास तो मोबाइल भी नहीं है और उनकी बहुत सारी सहेलियां इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और उन्हें इसी कारण चश्मे लग चुके हैं।
मैंने अपनी प्लस टू अभी पास की है, अभी तक मेरा पर्सनल फोन नहीं है मेरे पास, मम्मा का यूज करती हूँ और वो भी अगर एंटरटेनमेंट के लिए और लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करती हूँ।
अनिल कॉलेज में पढ़ते हैं और वो अपने पिता को यहाँ एक अस्पताल में दिखाने लाए हुए थे। तक उनके पिता डॉक्टर से चेकअप करवाते तो अनिल ने उस समय का इस्तेमाल मोबाइल पर क्रिकेट मैच देखना मुनासिब समझा। हमसे बात करने पर उनका कहना था कि ये अब शरीर का हिस्सा बन चुका है,
हम इसके साथ बन चुके हैं। और बात यह है कि जैसे मोबाइल है एक बेसिक नीड और मतलब एक पर्टिकुलर लाइक अ ब्रदर और फैमिली मेंबर हो चुका है।
डॉक्टर्स का कहना है कि इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करने से केवल दिमाग के रोगी ही नहीं और भी शरीर के रोग लग जाते हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से इंटरनेट डिसऑर्डर के पेशेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। पेट के रोगों के माहिर डॉक्टर अमिताभ मोहन जैरत ने बीबीसी से बात करते हुए बताया,
एक्सेसिव इंटरनेट एक तो ये है कि धीरे धीरे सारा इंटरनेट जो है वो अब मोबाइल फोन पे शिफ्ट हो गया, तो जब इसकी आदत पड़ रही है तो उसके साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शरीर में आपके परिवर्तन आते हैं और यही रोग जो है किसी न किसी तरीके से आपको आगे तंग कर सकते हैं।
इंटरनेट एक ज्ञान का साधन है लेकिन इसका इस्तेमाल और अन्य कार्यों में बढ़ गया है जो कि मरीज को वास्तविकता से दूर ले जा रहा है। बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन अमृतसर से।
गुरुदत्त को कौन नहीं जानता, फिल्मी दुनिया का वो कलाकार जो अभिनेता भी था और निर्माता निर्देशक भी। 1950-60 के दशक में आई प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद, गुरुदत्त की बनाई फिल्मों की गिनती आज क्लासिक फिल्मों में होती है। 9 जुलाई 1925 आज ही के दिन गुरुदत्त का जन्म हुआ था, उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल।
हम गमजदा हैं, लाए कहां से खुशी के गीत, कहां से खुशी के गीत।
प्यासा फिल्म में मोहम्मद रफी की गाई साहिद लुधियानवी की इस नज्म को गुरुदत्त की जिंदगी का फलसफा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। गुरुदत्त की अधिकतर फिल्मों के नायकों के रास्ते पथरीले हैं और वो लकीर के फकीर भी नहीं है। यूं तो गुरुदत्त का जन्म मैंगलोर में हुआ लेकिन उनका बचपन कोलकाता में बीता और वो भी बहुत बदहाली में। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी याद करती है,
मैट्रिक होने के बाद उनको बहुत दिल था कॉलेज जाने को, मगर हम लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, वी वेर वेरी पुअर। माँ और पिताजी दे कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम टू कॉलेज, तो इसलिए उन्होंने एक नौकरी ली थी। वहाँ उनकी सिर्फ 30 रुपीज सैलरी थी एंड फर्स्ट सैलरी से इतना जनरस थे वो, उनके टीचर के लिए एक भगवत गीता दिया और हमारे पिताजी के लिए कुछ कोट लाया और माँ के लिए साड़ी, हमारे लिए फ्रॉक और आत्मा जी के लिए कुछ शर्ट, सब के लिए कुछ न कुछ खरीदा।
गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पुणे के प्रभात स्टूडियो से की, वहीं उनकी मुलाकात देवानंद से हुई बहुत ही दिलचस्प अंदाज में। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं,
हमारे कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से मेरी कमीज गुरुदत्त के यहाँ और उनकी कमीज मेरे यहाँ पहुंचा दी और मजे की बात यह है कि हम दोनों ने वो कमीज एक ही दिन पहन ली। जब मैं प्रभात स्टूडियो में घुसा तो उनकी नजर मेरी कमीज पर पड़ी, उन्होंने उसे गौर से देखा और पूछा, ये कमीज आपने कहां से खरीदी? जब मैंने उनकी तरफ नजर उठाई तो देखा वो मेरी कमीज पहने हुए थे। हम दोनों को बात समझ में आ गई और हमने जोर का ठहाका लगाते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया, हम जिगरी दोस्त बन गए। एक दिन बियर का ग्लास लड़ाते हुए उन्होंने वायदा किया, देव अगर मैं कभी निर्देशक बनता हूं तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। मैंने भी उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया कि अगर मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके डायरेक्टर तुम होगे।
देवानंद को अपना ये वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी।
तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले।
बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात उभरती हुई गायिका गीता रॉय से हुई। धीरे धीरे उनका इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। गुरुदत्त ने बहुत मन से आत्मकथात्मक फिल्म कागज के फूल बनाई लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उनके निजी जीवन में भी कड़वाहट आ गई। 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी मौत का कैफी आजमी पर इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने उस पर एक नज्म ही लिख डाली।
रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
गुरुदत्त का आज जन्मदिन है और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि इस समय पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। वहां पर मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जो कि इस पूरे मैच को कवर करने के लिए और पूरी सीरीज को कवर करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। मैच रुका हुआ है, सीधे कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं नितिन श्रीवास्तव को एक बार फिर से। मैच तो शुरू नहीं हुआ है, अब आगे क्या नितिन?
अब आगे ये मोहनलाल साहब की फिलहाल बारिश हो रही है, लगातार मुसलसल बारिश हो रही है और अगले 1.5 से 2 घंटे बारिश का और प्रेडिक्शन है। तो अगर ये 2 घंटे भी बारिश होती है तो उसके बाद जाहिर है कि मैच कम ओवर्स का किया जाएगा और वो मैच अंपायर्स और रेफरीज मैच इसको डिसाइड करेंगे कि कितने ओवर का करना है। लेकिन अगर अब से 3 घंटे तक बारिश नहीं होती है तो वाकई में 20 ओवर के आसपास का मैच हो सकता है और अगर उसके बाद भी बारिश नहीं रुकी तो फिर मैच को कॉल ऑफ करना पड़ेगा आज के दिन। और फिर हालांकि ये स्टेडियम फ्लडेड है लेकिन उसके बावजूद कल एक रिजर्व डे होता है वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, तब तक बात पहुंच सकती है।
नितिन एक बात बताएं कि रिजर्व डे की हम बात कर लेते हैं, डकवर्थ लुइस से पहले तो कोशिश की जाएगी कि अगर मैच हो जाता है तो हो जाए, अगर रिजर्व डे पर मैच पहुंचता है तो ये मैच आज का ही कॉन्टिन्यूएशन होगा या फिर आगे क्या होगा?
नहीं, वो एक नए सिरे से खेला जाता है और वो नया मैच होता है, नया दिन होता है, तो इसलिए वो एक तरह से नया मैच होगा, नए फिर से टॉस होगा, फिर से सारी चीजें होंगी।
और अगर इसके बाद भी फैसला नहीं निकला,
अगर उसके बाद भी फैसला नहीं निकला तो भारत के पास 15 अंक है, न्यूजीलैंड के पास 11 अंक है, तो अगर उसके बाद भी फैसला नहीं निकला तो भारत की टीम यहाँ से लॉर्ड की बस पे बैठेगी और न्यूजीलैंड की टीम शायद वापस जाने का प्लान करेगी।
आज इस मैच को देखने के लिए जो वहां पर दर्शकों से आपकी मुलाकात हुई, कितना उत्साह और क्या क्या बातें सोच कर आए हैं?
बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में और एक तरह से कार्निवल है ये, एक तरह से क्रिकेट जो है एक सेलिब्रेशन होता है इंग्लैंड में या ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जहां मैंने कवर किया है श्रीलंका में, ओवरसीज में मैं देखता हूँ क्रिकेट ज्यादा एक कार्निवल होता है, फैंस होते हैं और जो डायस्पोरा है वो बहुत बड़ी तादाद में आता है मैच देखने। और मैं एक बड़ी दिलचस्प बात अपनी हमारी जो श्रोता है उसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैच शुरू हो जाता है उसके बाद लोग शुरू में भर जाते हैं, नारेबाजी ज्यादा होती है, नाच गाना होता है और क्रिकेट का ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है और जश्न भी ज्यादा हो जाता है।
जी नितिन श्रीवास्तव, मैनचेस्टर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचारों का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। हांगकांग में हुए प्रदर्शनों के नेताओं ने हांगकांग की कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम के भाषण की आलोचना की है। इस भाषण में लैम ने प्रत्यर्पण विधेयक को मृत कहा लेकिन आधिकारिक रूप से इसे वापस नहीं लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में ब्रितानी राजदूत पर हमला तेज करते हुए उन्हें महामूर्ख कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री टेरिजा मे की भी फिर से आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्था ऑक्सफैम ने पश्चिम अफ्रीकी देशों की सरकारों से कहा है कि वो अपने बढ़ते धन का इस्तेमाल गैर बराबरी को खत्म करने के लिए करें। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात का जो वक्त तय है सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें और bbchindi.com का पन्ना आपके साथ जारी है। मुलाकात होगी, नमस्कार।